पृष्ठ संख्या 159, अध्याय 14। आओ, बाहर चलकर बैठती हैं। बाहों में अपने नन्हे मुन्ने को उठाते हुए प्रमिला बोली और दोनों सहेलियां घर के बाहर आ गईं। सतवंत उसके पीछे पीछे आंगन में बिखरे लकड़ी के तख्तों के बीच में से बच बच कर चलती हुई आंगन पार कर गई। दोनों सहेलियां बढ़ई की लकड़ी रंधने की बल्ली के पास पहुंच गईं। सतवंत ने लकड़ी की एक पुरानी पेटी को उल्टा किया और उस पर बैठ गई। प्रमिला उसके सामने दो ईंटें जोड़कर बैठ गई। पेटी पर नहीं बैठ सकतो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं गंदे होते, मैं यहीं बैठूंगी। तू अपनी फिक्र कर। बच्चे को प्रमिला कभी गोद में लिटा देती, कभी उठाकर छाती से लगा लेती, कभी बाएं कंधे से सटा लेती, कभी दाएं कंधे से। बच्चा हुंकारता तो वह भी उसकी नकल उतारते हुए हुंकारा भरती। बार बार कभी उसकी ठुड्डी चूमती, कभी होंठ, कभी नाक। जा अपनी मौसी के पास। जानता है या कौन है? या तेरी मौसी है? हाय हाय, अभी से ठुड्डी बिचकाने लगा है, देख सत्तो। उई उई उई, और हंसकर प्रमिला ने उसे छाती से लगा लिया। ना जा ना जा मौसी के पास, मेरे पास ही चिपटा रहा कर सारा वक्त। फिर बच्चे को धमकाती हुई सी बोली, अब नहीं रोना, अब रोया तो मैं फिर पृष्ठ संख्या 160 कुएं की जगत पर छोड़ आऊंगी। हाय हाय, देख सत्तो, देख कैसे चलित्र करता है मेरे साथ। हाय देख, ठंडी सांसें भरने लगा है, बड़ा आया है, माँ को डराता है। और उसे छाती से लगाकर दाएं बाएं झूलने सी लगी। बच्चा जैसे झिझोड़ दिया गया, जिस पर पहले वह सुबकने फिर ऊंचा ऊंचा रोने लगा। हाय हाय, मैं बारी जाऊं, हाय हाय, मैंने भींच दिया। उई उई, माँ बहुत बुरी है, माँ मर जाए, माँ बहुत बुरी है। प्रमिला उसे बाहों में लिए अभी भी दाएं बाएं हिलोरें ले रही थी। बच्चा चुप हो गया तो प्रमिला ने उसे अपनी गोद में उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ थपथपाती हुई उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, मेरा राजा बेटा कभी माँ को तंग नहीं करता। प्रमिला ऊ ऊ ऊ करके उसकी पीठ थपथपाने लगी। प्रमिला को देख देख कर सतवंत का दिल बार बार भर उठता। सतवंत जब आई थी तो उसके मन में अनेक सवाल घूम रहे थे, पर बच्चे के प्यार में डूबी प्रमिला को देखकर उसे उन सवालों को पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वह उसे असंगत से लगने लगे थे। प्रमिला आश्वस्त लग रही थी। उसने अपने बाल भी समेट कर बांध रखे थे। उसकी आंखों में से तनाव के कारण पैदा हुआ अंचापन भी अब नहीं था। चेहरे पर एक प्रकार की स्निग्धता आ गई थी, आवाज में भी स्थिरता थी। उसकी आंखें अब भटकी भटकी इधर उधर नहीं ताक रही थीं। दिन भर की ठक ठक के बाद बढ़ई घर जा चुके थे। नारंग साहब के कमरे का दरवाजा चौखट में से निकाल कर बाहर दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया था। सतवंत घर की ओर मुंह किए बैठी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी तोड़फोड़ के बाद इस घर का क्या रूप निकलेगा। इस वक्त तो लगता था सारा का सारा घर नीचे आ गिरेगा। नारंग साहब की वकालत के साइन बोर्ड अभी भी ज्यों के त्यों टेढ़े मेढ़े टंगे थे। एक कील पर लटका हुआ बोर्ड पहले की ही तरह झूल रहा था। लगता था बढ़ाइयों का समस्त कौशल भी उसे सीधा नहीं कर पाएगा। क्या देख रही है सत्तो? प्रमिला ने कहा और स्वयं पीठ फेर कर घर की ओर देखने लगी। फिर सहसा हंस पड़ी। पिताजी बड़े निराले हैं, तुझे क्या बताऊं। सतवंत की आंखें फिर से लौट कर अपनी सहेली के चेहरे पर आ गईं। लगता था उसके हृदय का समूचा स्नेह उसकी आंखों में झलक आया है। प्रमिला हंसती तो सतवंत का दिल भर भर जाता। पृष्ठ संख्या 161। बड़े कंजूस हैं पिताजी, बढ़ाई को कील मेखे भी गिन गिन कर देते हैं। और डॉट डॉट। प्रमिला फिर हंसने लगी। शाम को जब वह काम कर चुकता है तो कभी अंदर से कोई टूटी हुई खाट उठा लाते हैं, कभी गुसल खाने का पटरा, और कहते हैं इसे भी ठोक कर ठीक कर जा। वह बड़बड़ाता है तो उसकी ठुड्डी पर हाथ रख देते हैं। मान जा यार, छोटा सा तो काम है, तेरे लिए क्या मुश्किल है, दो बार हथौड़ी से ठोकना ही तो है। छोटे छोटे काम मुफ्त में करवाते रहते हैं। बढ़ई बड़बड़ाता रहता है मगर इनका काम कर जाता है। डॉट डॉट दुकान तेरी कहाँ बनेगी और रहने के कमरे कौन से होंगे? हाय सत्तो, इसमें समझाने की क्या बात है, प्रमिला बोली। फिर घर की ओर घूमकर हाथ के इशारे से समझाती हुई बोली, पिताजी वाला कमरा तो देखा है ना, वह सामने वाला बाईं ओर, वहां दुकान बनेगी। उसके साथ वाला छोटा कमरा भी साथ में मिला लिया है, दो कमरे मिलाकर वहां दुकान बनेगी। पीछे के कमरों में हम लोग रहेंगे, बन जाएगी तो बड़ी अच्छी लगेगी, देख लेना। फिर भी कहती है तेरे पिताजी कंजूस हैं, घर तुड़वाकर तेरे लिए दुकान बनवा रहे हैं। हाय बड़े अच्छे हैं, अब तो बहुत बड़बड़ाते भी नहीं, पहले बहुत बड़बड़ाते थे, अब तो दिन भर बढ़इयों के साथ बैठे बतियाते रहते हैं। फिर थोड़ी देर तक चुप रहकर प्रमिला सतवंत के घुटने पर हाथ रखकर बोली, दुकान चल जाएगी ना सत्तो? तू क्या सोचती है, दुकान चल जाएगी? हाय मैं क्या जानू, कभी कभी मेरा दिल डूबने लगता है। पर सत्तो इधर सारे इलाके में दवाइयों की एक भी दुकान नहीं, मैं तो सोचती हूँ चल जाएगी, चलेगी चलेगी। सतवंत ने 20वीं बार प्रमिला को आश्वासन देते हुए कहा, चलेगी नहीं तो मैं घर घर जाकर दवाइयाँ बेच आया करूँगी, प्रमिला ने कहा, पर उसकी आवाज़ लरज गई। सतवंत के मन में बीसियों सवाल उठ रहे थे, प्रमिला को दवाइयों की क्या समझ है, या अंग्रेजी दवाइयाँ कैसे बेचेगी, 10वीं जमात तक ही तो पढ़ पाई है, और फिर इसे दुकान चलाने का तजर्बा ही क्या है, कैसे अकेली काम चला पाएगी, दुकान के लिए पैसा कहाँ से आएगा। पिताजी की वकालत अच्छी चलती है प्रमिला, पहले तो तू कहती थी पृष्ठ संख्या 162 उनका बहुत थोड़ा काम है। प्रमिला ने सिर हिलाया, काम तो इनका अभी भी कुछ नहीं सत्तो, बस यह मकान ही मकान है, पर इन्हें बीमे की अपनी एक पॉलिसी के 7,000 रुपये मिले हैं, वह सारा रुपया इन्होंने मुझे दे दिया है। कहते हैं 1,000 रुपया दुकान पर लगाएंगे, बाकी 6,000 का सामान खरीदेंगे, मेरे साथ दुकान पर भी काम करेंगे, तू जानती है सत्तो। प्रमिला फिर हंस पड़ी, दसियों डॉक्टरों से मिल आए हैं, भला डॉक्टरों से मिलने से क्या लाभ, डॉक्टर लोग तो केवल नुस्खे लिखते हैं, वह दवाइयाँ थोड़े ही खरीदते हैं। पर पिताजी कहते हैं नहीं, उनसे जरूर मेल मिलाप रखना चाहिए, इनका एक वकील दोस्त है, उसका दामाद दवाइयों की दुकान करता है, उसी ने इन्हें यहाँ दुकान खोलने का सुझाव दिया है, उस वकील को यह बहुत मानते हैं, उनकी दुकान बहुत चली हुई है, मैं उन्हें चाचा जी कहती हूँ। हाय बहुत अच्छे हैं, पहली बार जब आए तो मेरे सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, जैसे तू नारंग की बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है, तू किसी बात की चिंता नहीं कर। डॉट डॉट शुरू में वो अपने दुकान का ही कुछ माल यहाँ डाल देंगे, ज्यों का ज्यों बिकता जाएगा वह और माल डालते जाएंगे, बाद में जब दुकान चल निकलेगी तो दोनों दुकानों के लिए इकट्ठा माल मंगवा लिया करेंगे, इस तरह सस्ता बैठता है सत्तो। फिर पम्मू चाह कर बोली, तुम्हें मालूम है सत्तो, मैं उन्हीं की दुकान पर काम सीखने जाती हूँ, काउंटर के पीछे ग्राहकों के लिए दवाइयाँ उठा उठा कर देती हूँ, चाचा जी कहते हैं इस तरह तुझे दवाइयों के नाम और कीमतें डॉक्टरों के नुस्खे पढ़ने लग जाऊंगी, और वह कहते हैं मुझे इंजेक्शन लगाना भी सिखा देंगे। पम्मो बोलती जाती और सतवन के दिल में अजीब सी हलचल मचती जाती, कभी जी चाहता रो पड़े, कभी जी चाहता पम्मो को छाती से लगा ले, पर अभी यह मुन्ना दम ही नहीं लेने देता, जरा बड़ा हो जाए तो मुझे आराम हो जाएगा, प्रमिला ने कहा और लाड़ से मुन्ने के बाल सहलाने लगी। मुन्ने ने लेटे लेटे गहरी लंबी सांस खींची, मुन्ना शक्ल सूरत में बहुत कुछ प्रमिला पर गया था, वैसा ही पीला पतला सा चेहरा, वैसी ही छोटी सी ठुड्डी, केवल बाल घुंघराले थे जबकि प्रमिला के बाल सीधे थे, आँखों का रंग भी हल्का हल्का बादामी था जबकि प्रमिला की आँखें काली थीं, पर आँखों की बनावट वैसी ही गोल गोल थी और नाक तीखी। मैं तो सोचती हूँ दुकान चल जाएगी सत्तो, प्रमिला ने 10वीं बार कहा। पृष्ठ संख्या 163, मैंने काम सीख लिया तो मुश्किल नहीं होगी, अभी से चाचा जी कहते हैं दवाइयाँ पहचानने लगी हूँ, हिसाब भी कर लेती हूँ, अब कितने ही बिल अपने हाथ से बनाती हूँ, काम तो मुश्किल नहीं। आगे भगवान मालिक है। फिर देर तक शून्य में आंखें लगाए बैठी रही, मानो अपना भविष्य पढ़ रही हो। चाचा जी तो कहते हैं तू दुकान का काम सीख जा तो तुझे नर्सिंग का भी काम सिखवा दूंगा, दवाइयों का काम भी सीख लेना। आजकल नर्सों को भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सत्तो आंखें फाड़े अभी भी अपनी सहेली को देखे जा रही थी। प्रमिला की ओर देखते हुए बार बार उसकी आंखें नम हो जाती और शरीर में पुलकन सी दौड़ जाती। ज्यों ज्यों माल बिकता जाएगा हम उसकी लागत उन्हें देते जाएंगे, अपनी बचत के पैसे अपने पास रखेंगे। दवाइयों में अच्छी कमाई होती है, मैं रोज देखती जो हूँ। प्रमिला दवाइयों के व्यापार की बात यों कर रही थी मानो बरसों से उसके रहस्य जानती हो। दुकान के दरवाजों पर तो सफेद रंग करवाएंगे, ठीक है ना सत्तो? दवाइयों की दुकान पर तो सफेद रंग ही फबता है। दरवाजों पर सफेद रंग, दीवारों पर हल्का नीला, अलमारियों पर भी सफेद रंग, क्यों ठीक है ना? जब कुछ पैसे आ जाएंगे तो नीचे सीमेंट का फर्श करवा देंगे। तू चाचा जी की दुकान पर जाकर देख, छम छम करती है, तेरी आंखें चौंधिया जाएं। हर चीज ऐसी साफ सुथरी, हाथ लगाओ तो मैली होती है। मैंने दो सफेद साड़ियां भी ले ली हैं, सूती हैं मगर अच्छी हैं। चाचा जी कहते हैं दवाइयों की दुकान में सफेद कपड़े पहनकर काम करना चाहिए, आयन साफ सुथरे चमचम करते। मैं तो पिताजी को भी सफेद पतलून और सफेद कमीज पहना कर दुकान में बैठाऊंगी। मैं अब उन्हें अदालत में ठोकरे खाने थोड़े दूंगी, बहुत कर लिया उन्होंने। हाय सत्तो, जब मैं यहाँ आई तो घर में बर्तनों पर जाले लगे हुए थे, तुम्हें क्या बताऊं, दो दो इंच धूल और मिट्टी। अब तो वह भी कहते हैं मैं इस घर पर रहूंगा, तेरा काम देखूंगा, हिसाब किताब वही रखेंगे। मैं थोड़े ही रखूंगी। इन 2 वर्षों में प्रमिला ने लंबा फासला तय कर लिया था और सतवंत को लग रहा था कि आने वाला रास्ता और भी लंबा होगा। मैं तो दुकान में बच्चों का सामान भी रखूंगी, प्रमिला कहे जा रही थी। चाचा जी कहते हैं साबुन तेल भी रखना, साबुन तेल, ब्लेड, दाढ़ी मूड़ने के ब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, बाल करने के हिजाब, ऐसी चीजें। दवाइयों की सभी दुकानों पृष्ठ संख्या 164 में रहती हैं, ग्राहक को आसानी रहती है ना। दवाई लेने आया, साथ में टूथपेस्ट भी ले ली, साबुन की 2 टिकियां भी ले ली। बीच में अनायास ही सतवंत पूछ बैठी, तुझे पागलखाना याद है पम्मो? प्रमिला चुप हो गई, उसका चेहरा उतर सा गया, फिर धीरे से बोली मुझे कुछ भी याद नहीं, बहुत याद करने की कोशिश करती हूँ तो आंधी सी चलने लगती है, जाने क्या था। डॉट डॉट मैं और सरदार जी तुझे देखने गए थे, कुछ नहीं तो 5 बार गए थे, तुझे याद है? प्रमिला का चेहरा उदास हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं, कोशिश भी करूँ तो याद नहीं आता। तू वहाँ बुत्तियों पर बैठकर थिगलियाँ और चिथड़े बटोरती रहती थी, सतवंत ने उसे हंसाने की चेष्टा करते हुए कहा। करती रही होंगी, मुझे क्या मालूम क्या करती रही हूँ। उदास चेहरे से ठंडी सांस भर कर बोली, मुझे कुछ याद नहीं, बहुत सोचती हूँ तो जैसे गाड़ी के पहिए से घूमने लगते हैं। फिर ठंडी सांस भर कर बोली, किस्मत फूट जाए तो कोई क्या करे, पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे जिनका फल भोग रही हूँ, और क्या। दोनों सहेलियाँ चुप बनी रहीं। थोड़ी देर बाद सतवंत ने पूछा, उसे कभी देखा है? उसका अता पता कुछ मालूम है? कभी मिला है तुझे? प्रमिला का चेहरा तनिक कठोर पड़ गया, इस सवाल के लिए वह तैयार नहीं थी। फिर सहसा से झटक कर धीरे से बोली, मुझे मालूम करके क्या लेना है, वह जाने उनका काम। सच पूछो तो सत्तो, अब वह मेरे मन पर से उतर गया है, उसके पीछे बहुत भागी भटकी हूँ पर अब मन नहीं करता। प्रमिला थोड़ी देर तक चुप बनी रही, फिर सहसा चाहक कर बोली, सत्तो मैं तो पप्पू से भी मिलाई हूँ। सच? हाँ हाँ सत्तो, सच कहती हूँ। और उदासी की छाया प्रमिला के चेहरे पर से गिर गई, सीधी उसके स्कूल जा पहुंची। रात को गाड़ी में बैठी, सुबह देहरादून पहुंच गई, 9 बजते बजते स्कूल के बाहर खड़ी थी। पहले तो उन्होंने मुझे इजाजत ही नहीं दी, कहने लगे तुम्हारा नाम नहीं लिखा है हमारे पास, पृष्ठ संख्या 165। मैंने कहा मैं तो अपने बेटे से मिलकर जाऊंगी, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। फिर एक भारी भरकम सी औरत आई, मैंने कहा, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। पहले तो उसने भी बड़े तेवर दिखाए, फिर मान गई। कहने लगी, अच्छा तुम अंदर तो नहीं जा सकती, तुम यहीं दफ्तर में उससे मिल लो, हम दफ्तर में उसे बुला देती हैं। सतवंत की फैली फैली आंखें प्रमिला के चेहरे पर लगी थीं। फिर वह आया। हाय सत्तो, मैं क्या बताऊँ, पहले से लंबा हो गया है, मेरे कंधे तक आता है, पर मुझे दुबला सा लगा। ना जाने वहाँ कुछ खाने को देते हैं या नहीं। फिर सहसा सत्तो से पूछने लगी, क्या मैं बहुत बदल गई हूँ, बहुत दुबली हो गई हूँ, क्या मेरी शक्ल बहुत बदसूरत हो गई है? नहीं तो, हाय पहले तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं, दरवाजे में ही ठिठका खड़ा रहा, फिर जब उसने पहचाना तो लपक कर मेरी ओर आया, पर फिर रुक गया और घूमकर वापस जाने लगा। हैं देखो कैसे कसाई लोग हैं, उसके मन में बैठा जो दिया था कि अपनी माँ से नहीं मिलना, मैंने खींच कर उसे छाती से लगा लिया। कैसे दुष्ट लोग हैं, बच्चे के मन में उसकी माँ के खिलाफ जहर भरते हैं। मैंने छाती से लगाया तो मुझे लगा जैसे मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। जी चाहा उसे उठाकर भाग जाऊं, पहले तो पप्पू डरता रहा, सहमा सहमा रहा, फिर धीरे धीरे खुलने लगा। तुझे मालूम है सत्तो, जब मैं लौटने लगी तो मुझे क्या कहता था, कहने लगा, तू मत जा माँ, यहीं पर स्कूल में चपरासन की नौकरी कर ले। और पमिला हंस दी, और हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू छलक आए। बेटा भी जानता है कि मैं चपरासन ही बनने योग्य है। कब गई थी पप्पू से मिलने? महीना भर हुआ है, अब तो मैं हर दूसरे महीने जाकर उससे मिलाया करूंगी। अगर उन्होंने मिलने नहीं दिया तो? नहीं मिलने देंगे तो मैं लुप छुप कर मिलाऊंगी, नहीं मिलने देंगे तो मैं लुप छिप कर मिलाऊंगी, मिलने क्यों नहीं देंगे? प्रमिला चुप हो गई और थोड़ी देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। शाम घिरने लगी थी। आंगन के पार एक और पुराना भीमकाय जामुन का पेड़ था, जिसमें शाम के साए झुरमुट बांधे पहुंच गए थे। गोद में लेटा प्रमिला का बेटा गुनगुनाने लगा था। प्रमिला ने उसे गोद में सीधा लिटा दिया और कंधों पर पृष्ठ संख्या 166 से चुन्नी उतार कर बच्चे पर डाल दी। अनजाने में सतवंत ने फिर महेंद्र की बात छेड़ दी। उसका जिक्र आने पर प्रमिला के चेहरे पर एक छाया सी दौड़ गई, उसका मन बुझ सा गया। एक छीण विरक्त सी मुस्कान सी उसके चेहरे पर आ गई। सायंकाल के घिरते सायों से मेल खाती हुई फिर वह धीमी सी आवाज में बोली, मैं क्या जानू सत्तो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर गहरी सांस खींच कर बोली, जो देश उसका भला, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। हमारी गली में एक फकीर बोला करता था, उसके करम उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। पर प्रमिला अंदर ही अंदर विचलित हो उठी थी। मैं अब उन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहती, शाम का वक्त है सत्तो, किसी का बुरा नहीं चेतना चाहिए, पर उससे अब मेरा दिल फिर गया है। अगर कल वह कहे कि वह तुझे बसा लेगा तो उसके पास चली जाएगी? सतवंतन ने मानो प्रमिला का दिल टोहते हुए पूछा। प्रमिला चुप हो गई, क्षण भर शून्य में देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं क्या जानू सत्यो, मेरे दिल से पूछती है तो उसके साथ रहने को मेरा मन नहीं करता। हाँ कभी कभी यह मन में आता है कि बच्चे बड़े होंगे तो क्या कहेंगे, हमारा बाप था भी, फिर भी हम अनाथों की तरह पले हैं। वे यह तो नहीं सोचेंगे कि हमारे बीच क्या बात हुई थी, क्या मालूम ये मुझे ही दोष देने लगे। पर अब मैं उसके पीछे मारी मारी तो नहीं फिरूंगी, बहुत हो गया। रुखी सुखी खिलाकर जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल लूंगी, इनके लिए 2 जून रोटी का बंदोबस्त तो कर ही लूंगी, भगवान ने मुझ पर बड़ी दया की है। सत्तो मुझ में हिम्मत आ गई है, अब मैं डरती नहीं, थर थर कांपती नहीं रहती, अब तो मैं पिताजी को भी परेशान नहीं होने देती। पहले वह बहुत घबराते थे, बहुत परेशान रहते थे, और मेरा भी दिल डोल डोल जाता था। वह कमरे में ऊपर नीचे टहलें और रोज रात को एक ही सवाल करें, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब यह मुश्किल से 10-12 दिन का रहा होगा, इसे देखकर वह और भी घबरा जाते थे। एक दिन साफ साफ मुझसे कहने लगे, क्या सबूत है कि यह महेंद्र का ही बेटा है? तू पागलपन में गली गली सड़क सड़क घूमती थी, मैं सिर से पांव तक कांप गई, रात भर रोती रही, पिताजी की आंखों के सामने सारा वक्त कचहरी ही घूमती रहती थी। वह इस बात को लेकर कचहरी में तुझे बदनाम भी करेगा और तलाक भी हासिल कर लेगा और एक कौड़ी भी तुझे नहीं देगा, कभी इस बात को भी सोचा है? वह कहते, मैं कांप कांप जाती सत्तू। कुछ दिन पिताजी ठीक रहे, हंसे बोले, फिर किसी दिन सहसा घबराने लगे। पृष्ठ संख्या 167। रात को उठ उठ कर टहलने लगे, उन पर ऐसा जुनून सवार हो जाए, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाए, इसको मेरे सामने नहीं लाया कर। वह कहें, इसे देखकर किसी दिन मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, मैं आज हूं तो कल नहीं हूं। इसके रहते वह कभी भी तुझे अपने घर में नहीं बसाएगा, वह बार बार कहें। तब यह मुन्ना मुश्किल से 15-20 दिन का रहा होगा। मेरी समझ में नहीं आए मैं क्या करूं। पिताजी को बदनामी का डर था, वह समझते थे कि मामला कचहरी में जाएगा और वह लोग मुझे बदनाम करेंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे और अदालत उनकी मान जाएगी, तलाक मंजूर हो जाएगा और इस बच्चे के कारण मुझे कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं बच्चे को नहीं रखूंगी, इसे सुबह सवेरे ही कहीं फेंक आऊंगी। इसके कारण अगर पिताजी दुखी हैं तो मैं उन्हें दुखी क्यों करूं? मेरी भी मत मारी गई थी, अगर उन्हें बदनाम करना है तो इसके रहते भी बदनाम करेंगे और ना रहते भी बदनाम करेंगे। इसके फेंक आने से उनका मुंह थोड़े बंद किया जा सकता था, पर पिताजी की बेचैनी मुझसे देखी न जाए। मैं मन ही मन कहूँ, कहीं इनकी भी वही हालत हो गई जो मेरी हो गई थी तो क्या बनेगा? अगर यह पगला गए तो मेरा क्या बनेगा और उनका क्या बनेगा? जानती है सत्तो, उन दिनों मुझे लगता जैसे मैंने बड़े पाप किए हैं और यह भी पाप के ही कारण मेरी गोद में आया है। पिताजी की देखा देखी यह भी मुझे बुरा लगने लगा था, पर अंदर से मेरा दिल नहीं माने। अंदर से मैं यही बार बार कहूँ, इसमें इसका क्या दोष है? मैं तो पापिन हूँ, पर इसका क्या दोष? इसे तो खबर ही नहीं थी कि मेरे साथ क्या बीत रही है। पर मैं दूसरे दिन सुबह ही इसे उठाकर चल पड़ी। हाय, कितना अंधेरा था। मैं इसे गोद में उठाकर ले तो आई, पर इसे फेंकू कहाँ? मेरी समझ में नहीं आए और रो रो कर मेरा बुरा हाल, उधर रोती जाऊं, इधर दूध से मेरा कुर्ता भीगता जाए। यहाँ नजदीक ही एक धर्मशाला है, उसके बाहर पुराना कुआं है, तूने देखा होगा, शतगुर की धर्मशाला है। मैंने सोचा वहां कुएं की जगह पर इसे रख आऊंगी। मैं उसी ओर चल पड़ी, घूप अंधेरा था, नजदीक ही टांगों वालों का एक डेरा है, पर उस वक्त वहां सब सोए पड़े थे, बड़ा चुपचाप था, बड़ा सुनसान सा लग रहा था। मैं इसे उठाए धर्मशाला के कुएं पर जा पहुंची और इसे चुपचाप कुएं की सीढ़ी पर लिटा दिया। उस वक्त तक मेरा दिल मजबूत था, मैं लौट भी पड़ी, पर सत्तो उस वक्त यह गुनगुनाया। सड़क तक पहुंची तो मुझे इसके रोने की आवाज आई, इसके दूध का वक्त हो रहा था, सुबह एन 4 बजे यह दूध के लिए रोता है। पृष्ठ संख्या 168। मैं पागलों की तरह लौट पड़ी और वहीं सीढ़ी पर बैठकर इसे दूध पिलाने लगी। दूध पिलाती जाऊं और रोती जाऊं, धीरे धीरे पौ फटने लगी और मैं वहीं बैठी रही। इसे पूरा दूध पिलाए बिना मैं कैसे छोड़ जाती, क्यों सत्तो? इतने में दिन चढ़ने लगा, तांगे वाले जागने लगे, ग्रंथी ने धर्मशाला का दरवाजा खोला और झाड़ू लगाने लगा। मैं वहीं बैठी रही, मुझे सब कुछ भूल गया। जब मैं दूध पिला चुकी तो यह मेरी गोद में लेटे लेटे गहरी नींद सो गया था। मैं इसे उठाकर छाती से लगाए घर लौट आई, मुझे भूल ही गया कि मैं इसे फेंकने गई थी। जब मैं घर के पास पहुंची तो पिताजी मुझे घबराए हुए घर के बाहर आते मिले। उन्हें डर था कि मैं कहीं अपनी जान पर ही खेलने निकल गई हूँ। मुझे देखकर वह आश्वस्त हो गए और उन्हीं कदमों अंदर चले गए, कुछ भी नहीं बोले। उस दिन के बाद उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा। अब तो यह बड़ा हो रहा है, इसे देखकर अब तो कभी कभी बात भी करते हैं, इसे दुलारते भी हैं। अब तो मैं मर भी जाऊं फिर भी इसे अपने से दूर नहीं करूंगी। मैं पापिन, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, पर मैया पाप तो नहीं करूंगी, इसे वहां कैसे छोड़ आती सत्तो? सतवंत ने बच्चे की ओर देखा। इस बीच वह मुंह में अंगूठा डाले प्रमिला की छाती से लगा सो गया था। जिंदगी का फासला लंबा था। सतवंत को लगा जैसे उसकी सहेली दम के लिए किसी पड़ाव पर रुकी है, अभी उसे बहुत दूर जाना है। पर सतवंत को विश्वास था कि वह चल पाएगी, अपने पैरों पर चलती हुई बहुत सी मंजिलें काट डालेगी।